अभी इंडिया का क्राइम सीन कैसा है?
कल का ही केस है, देयर इज अ पर्सन, ही वाज अंडरगोइंग डिप्रेशन, वाइफ को स्टैब किया, अटैक किया, बच्चे को थोड़ा लगा, ही हैड हार्ट अटैक एंड ही डाइड।
यू वर अ चीफ ऑफ द वॉर क्राइम्स एट यूएन मिशन कोसोवो।
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आई रिमेम्बर वॉज जिसके अंदर हेडलेस बॉडीज का केस था।
एंड हाउ मच इज अ बेसिक सैलरी फॉर एन आईपीएस ऑफिसर?
अब सोचिए, कहना आसान है कि यार ये पुलिस का जॉब है, ये तो कुछ करते ही नहीं है।
आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ना एक रिक्वेस्ट है। हमने ये नोटिस किया कि 85% लोग जो हमारा एपिसोड कंज्यूम करते हैं उन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ 15% लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है। सो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग 1 मिलियन के बहुत करीब हैं। सो प्लीज़, अगर इस चैनल ने कभी भी आपको कुछ भी वैल्यू दी है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें 1 मिलियन तक पहुँचा दो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस लव टिल नाउ एंड आई होप कि आप आगे भी करते जाएंगे। आज का एपिसोड हमारा आईपीएस रविंदर सर के साथ है। हमने उनसे ये समझने की कोशिश करी कि इंडिया में क्राइम सीन क्या है, इंडिया में पुलिस की लीडरशिप कैसे वर्क करती है। जब भी बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, जैसे कुंभ मेला है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है सब चीज़ें गलत होने की, उसको पुलिस मैनेज कैसे करती है, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होती है, क्या सिस्टम होते हैं, क्या चीज़ें वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बाद भी अगर गलत हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे करते हैं। उसके बाद हमने समझने की कोशिश करी कि कभी भी जब बहुत ट्रिकी केसेस आते हैं, जैसे आईपीएस रविंदर सर को पता करना था 3 हेडलेस बॉडी के ओरिजिन का, तो वो कैसे पता करते हैं, पुलिस क्राइम सॉल्व कैसे करती है, कभी कोई कहीं से किडनैप हो जाता है या साइबर क्राइम हो जाता है या कहीं मर्डर होता है तो पुलिस क्या करती है। हमने बहुत सारी बातें करी और ये समझने की कोशिश करी कि क्या बॉलीवुड में जो आप देखते हो वो सही है कि गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट हेल्थ, क्योंकि आईपीएस रविंदर सर ने एट द एज ऑफ 50 ही कंप्लीटेड आयरन मैन एंड देन ही कंप्लीटेड डेक्कन क्लिफहैंगर, तो इतनी सारी चीज़ें एट द एज ऑफ 50 होती कैसे। तो ऐसे माइंडसेट क्या था पहले कि बिकॉज योर पापा भी पुलिस में थे सो आपको बनना वही था एंड यू हैड क्लियर, तो उस टाइम में माइंडसेट क्या था कि इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेता हूँ? कोई स्पेसिफिक रीजन था कि वो ज्वाइन किया? मे बी सिक्योरिटी, मे बी सेल्फ डाउट, मे बी कि नहीं यार कुछ और करते हैं, घर में एक बंदा हो गया तो दूसरा नहीं करना, कुछ ऐसा कोई रीजन?
बिल्कुल ऐसा ही था मुझे लगता है उस टाइम पे, क्योंकि हमारे समय पे जो है 2-3 ही ऑप्शंस जो है लोग एक्सप्लोर करते थे।
ओके,
इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, या फिर आर्ट से बीए वगैरह करके आपको जो करना है बैंक जॉब या कुछ भी करना है वो करेंगे। तो इसलिए मैंने फिर साइंस सब्जेक्ट्स लिए थे, इंजीनियरिंग में फिर हो गया, तो और इंजीनियरिंग में होने के बाद में तो बाकी सब चीज़ें उसके बाद में पैरेलली, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपको इन जॉब्स के लिए ग्रेजुएट होना है, तो ग्रेजुएट आप किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, बट इसमें क्या था कि आप अगर उसमें सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको जॉब तो पक्का है। तो उस समय पे बिजनेस करेंगे या कुछ और करेंगे ऐसा नहीं था। तो ये एक जॉब सिक्योरिटी बोल सकते हैं, और वो उस टाइम पे बिल्कुल था।
ओके, टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, ओके यंगस्टर्स है ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स में आजकल अटक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती, राइट? एंड रीसेंट क्राइम वाज अबाउट दिस लिविंग रिलेशनशिप्स पे जो हुआ था, श्रद्धा वॉलकर केस जो आपने देखा होगा, राइट? तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट कि शुड पीपल लाइक व्हाट आर द स्टेप्स दे शुड टेक व्हेन आर मीटिंग पीपल? जैसे आपने था फेसबुक वो इतने क्लोज आ गए कि उन्होंने 32 लाख एक्सटॉर्ट कर लिए। सो डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन लिविंग रिलेशनशिप्स, और डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दैट?
ये जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं एक्चुअली ये ऐसी चीज़ें जो होने वाली हैं, जो हो रही हैं, एंड विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड। मेरा इस पे यही बोलना है कि बेशक इसमें कोई लीगली यू कैन नॉट स्टॉप एनीबडी टू मैरी, टू लिव टुगेदर और वॉट एवर, उसमें आप सिर्फ यही चीज़ें देखें कि भाई वो इंसान कैसा है, उसका आज जो है सोशल प्रोफाइल पे आप लोग चेक कर सकते हैं, बट ठीक है आपका जो अफेयर हो जाता है तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं सोचते आप, परंतु आप जब साथ में रह रहे हैं आपको लग रहा है कि मेंटली द पर्सन इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल और ही इज़ एक्सट्रीम इन हिज आइडियाज़, तो और हु डजंट बिलीव इन discussions, but he gets into arguments for everything.
Nice.
So these all are the psychological things which you must be able to understand. और मैं इसमें एक और चीज़ जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, the first 1 year is very important whether you are married or unmarried. In this 1 year, if you are able to understand each other, if you know each other's point of view, if you are able to find a middle way, जिसमें कि हम बीच के रास्ते पे, क्योंकि हर एक के अपने व्यूज हैं, हम अलग अलग कल्चर्स में बड़े होते हैं, हमको हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, हमारे फ्रेंड्स अलग हैं, हमारे पेरेंट्स के और हमारे एक्सपीरियंस, तो ये इतनी सारी जब डिफरेंसेस हैं तो आपको एक साल लगता है समझने में. आप ब्लाइंडली सब चीज़ें कि मेरा अकाउंट ये है, मेरा पैसा ये है, मेरा OTP ये है, मेरा मोबाइल पासवर्ड ये है, मेरा ये वो है, सो देन यू कैन बी ट्रैप्ड. क्योंकि आपको मालूम ही नहीं अगला आदमी कैसा है. सो प्लीज़ ट्राई, गिव इट अ टाइम. आई एम नॉट सेइंग दैट ये, बट डू एवरीथिंग, सब चीज़ें जो हैं सोच विचार के करें, आराम से करें, क्योंकि आपको लंबा जीना है, लंबा उस आदमी के साथ में रहना है. तो अगर आपको पहले ही 6 महीने में 7 महीने पता चल रहा है कि नहीं, दिस इज समथिंग फिशी, कुछ अलग है, तो आप उस चीज़ को ध्यान से करें. ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़.
ट्रू. एक आपने एक बोला कि कैसे यू नो एक्सट्रीम थॉट्स हैं वो सामने वाले के पता करो, तो आपने इतने लोगों से डील किया जैसे इंडिया में, कोई साइंस होते हैं कि ये इंसान हो सकता है कि एंगर में बहुत एक्सट्रीम हो जाए? कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई साइंस होते हैं किसी इंसान के कि यहाँ कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो आप किसी को सिचुएशंस में डाल दो या क्वेश्चंस पूछो जिससे आपको एक थोड़ा कैरेक्टर के बारे में पता चले या सामने वाले को बेटर अंडरस्टैंड करने का मौका मिले? कैन यू एक्सप्लेन 2-3 क्वेश्चंस या मे बी 2-3 साइंस यू कैन गिव मी कि इस टाइम पे अगर वो ऐसा करते हैं तो सोचो कि मे बी दिस इज फिशी?
जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन में आपका एक व्यू पॉइंट है, मैं उस पर एग्री करूँ या डिसएग्री करूँ वो एक अलग चीज़ है, बट वो आप उस पर फाइट कर रहे हैं, मतलब वो आप ही ठीक हैं, ऐसा नहीं होता ना. क्योंकि आपका पॉइंट, आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, आप अलग उससे आए हैं, तो आप उस पर आप मानने को ही तैयार नहीं है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कल का ही केस है, कहाँ का केस है, मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा. देर इज़ अ पर्सन, दे से ही वॉज अंडरगोइंग डिप्रेशन, और उसने जो है अपनी वाइफ को स्टैब किया, कई बार स्टैब किया. देन ही वॉन्टेड टू अटैक हिज सन ऑल्सो, अबाउट 16 ईयर्स, अटैक किया, बच्चे को थोड़ा लगा, वो बच गया. देन अल्टीमेटली दिस पर्सन ऑल्सो कोलैप्स्ड, जो ये सब चीज़ें कर रहा था, ही हैड हार्ट अटैक एंड ही डाइड. अब ये जो चीज़ हुई है, इस चीज़ में इतने दिनों से ऐसी अब चीज़ चल रही होगी, ये ओवर टाइम तो होता नहीं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये होता है, एकदम स्पर्ट तो नहीं होगा. तो ये चीज़ें समझना कि हम जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, हम एक दूसरे को ये कर रहे हैं कि नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ अलग हैं, मेरे व्यूज़ अलग हैं, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए. और या फिर जो है हम अपनी चीज़ें किससे डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो हमको इन्फ्लुएंस कर रहा हो उसको, ये गलत चीज़ें. तो ये ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है. नहीं तो इतने पॉइंट तक हम लोग पहुंच जाते हैं कि हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और या तो हम खुद को हार्म कर लेते हैं या दूसरों को हार्म कर देते हैं.
आप साइकोलॉजी पढ़ते हो क्या बहुत ज़्यादा? जिस्ट
क्योंकि इनफैक्ट आई एम डूइंग एम ए साइकोलॉजी नाउ.
नाइस, दैट्स इट. बिकॉज़ द वे ऑफ डीलिंग एट सर्टेन पॉइंट्स, आई कैन सी दैट यू हैव अ वेरी यू हैव एन अप्रोच कि हाउ कैन आई अंडरस्टैंड द अदर पर्सन मोर देन कि मेरे पास ये सोल्यूशन है ले लो. यू आर लाइक ओके मैं सामना ले कैसे समझू, विच इज़ वेरी वेरी लाइक इट्स very admirable, like I admire so that. Like I at one point I want to reach a position where I can have complete control over my mind and my emotions so that I can think in this way kya samne wala kaise kya kar raha hai, which is I really try very hard for this, because it's all because I've been surrounded by good people. My dad, my mom, well, we look kafi stable log hai. Like my mom is extremely empathetic. वो बिलीव करती सिर्फ गिविंग में, राइट. मेरे डैड एक्सट्रीमली लाइक ही बिलीव्स इन पीस एंड हार्मनी. तो मतलब मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बट फिर भी मुझे लगता है कि दिस व्हाट यू आर डूइंग हियर इट्स वेरी एडमिरेबल. लाइक जस्ट वांटेड टू
थैंक यू पुट दैट आउट. इनफैक्ट आपने एम्पैथी का जो बताया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एम्पैथाइज नहीं कर रहा किसी के साथ में, मैं ऑफिस में बैठा हूँ सुबह से शाम तक, मेरे पास में बच्चा भी आएगा छोटा, हु वुड बी से 7-8 ईयर्स, या पूरा स्कूल का, क्योंकि मैं अलाउ करता था बच्चों को वो देखें कि पुलिस कैसे काम करती है और सीपी कैसे काम करता है. तो मैं यहाँ बैठा हूँ, एंट्री वहाँ से होती थी, वो सामने से आके सब लोग जाते थे. उनका मन में जो डर है वो निकलना चाहिए.
हाँ.
तो उनको देखना चाहिए कि ऐसे होता हमारा एसपी. तो वो मैं करता था, मैं बैठा हूँ बच्चों से मिल रहा हूँ, इमीजिएटली तब पता चलता है कि एक वो 80 ईयर्स का एक जेंटलमैन है, वो आपसे मिलना चाहता है, मैं उससे मिलता हूँ. उसके बाद में एक यंग लड़की आती है 18 साल की, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रही है. उसके बाद में फिर मेरा पुलिस ऑफिसर आता है कि साहब मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे छुट्टी चाहिए, या मेरे बच्चे का अभी पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, उससे उसके बारे में, या फिर उस थोड़ी देर के बाद में आता है कि एक क्रिमिनल हमने पकड़ा है और ये ऐसे ऐसे, उसको मुझे हैंडल करना है. तो आप ये सोचो मैं पूरे दिन में कितनी तरह के लोगों से मिल रहा हूँ. जो मेरा बिहेवियर क्रिमिनल के साथ में वो बच्चे के साथ में नहीं होगा, जो बच्चे के साथ में वो मेरा 80 ईयर्स ओल्ड के साथ में नहीं होगा, उसके साथ में वो 18 ईयर्स की बच्ची के साथ में नहीं होगा. तो सोचो थ्रू आउट द डे मेरा दिन कैसे जा रहा है.
हाँ.
पूरे उसमें, और फिर एकदम से कॉल आती है साहब वहाँ पे राइट सिचुएशन हो गया है, तो मैं इमीजिएटली वहाँ पे भाग रहा हूँ पूरी फोर्स के साथ में, उसको भी हैंडल करना है. थिंक अबाउट अ सिचुएशन अबाउट सच थिंग्स पूरे दिन में. कहना आसान है कि यार ये पुलिस का जॉब है, ये तो कुछ करते ही नहीं है, बट ट्रस्ट मी एन इंस्पेक्टर हु इज सिटिंग इन अ पुलिस स्टेशन, उसको पूरे दिन में इन सब लोगों से बात करना होता है.
इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज आप हर पॉइंट पे हर इंसान के साथ जनरेशनली रेलिवेंट होके उससे बात करके उसको सोल्यूशन देना इज नॉट ईजी.
इट्स नॉट ईजी. So you have to empathize. उस बच्चे के साथ में मैं अपने को उस बच्चे के लेवल पे लेके आ रहा हूँ कि बेटा कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या जानना चाहते हो तुम. अच्छा ऐसे हुआ, वो उसने क्या किया. सोचो 18 साल की बच्ची है, वो बोल रही है कि सर मेरे को ईव टीजिंग हुआ है, बट उसको ओपन नहीं हो रही है वो. तो मैं अपनी पुलिस ऑफिसर को बुला रहा हूँ, लेडी पुलिस को, फिर हम लोग उससे पूछ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. फिर 80 ईयर्स का है वो, तो इतने मेरे दादा के एज के हैं, वो मेरे से बात कर रहे हैं, वो उनको लगता है कि ये बच्चा है ये क्या. तो वो उसी हिसाब से अथॉरिटेटिवली मेरे से बात कर रहे हैं, बट मैं उनसे भी एम्पेथाइज कर रहा हूँ कि यार हाँ इनका क्या सोचना है. मैं उस हिसाब से बात करूँगा कि मेरे बच्चे मेरे को तकलीफ़ दे रहे हैं, मेरा घर है, अब मैंने उनके नाम पर कर दिया, आज मुझे ही घर से बाहर निकाल रहे हैं. तो मैं उसके लेवल पर सोचूँगा यार ऐसा हो गया है तो
अलग.
तो दैट एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पर्सन इवन फॉर यू और इवन फॉर एवरीबडी, द पर्सन हु डजंट एम्पैथाइज आई थिंक ही इज अ फेलियर. ही कांट गिव जस्टिस टू अदर्स. एम्पैथी इज द बॉटम लाइन.
ट्रू. दैट इज दैट आई हैव लर्न दैट फ्रॉम माई मॉम. आई थिंक दैट्स व्हाई मेरी मॉम सबको बोलती भी कि मुझे गुस्सा नहीं आता. बट इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा नहीं आता, इट्स जस्ट आई हैव लर्न, आई हैव सीन माई मॉम ट्रीटिंग सिचुएशंस इन अ वे दैट which has helped me become a better person.
Mm-hmm.
Okay, so मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था और मुझे ना पता चला कि आप बहुत बड़े एडवेंचर जंकी हो. Mm-hmm. आपको बहुत एडवेंचर्स करना पसंद है. सो यू हैव डन डेकन क्लिफ हैंगर.
या
सो डेकन क्लिफ हैंगर होता क्या है. आई नो ट्रायथलॉन्स तो उस पर. तो डेकन क्लिफ हैंगर क्या होता है.
सो डेकन क्लिफ हैंगर जो है एक एंड्योरेंस साइकिलिंग इवेंट है.
ओके.
और दिस इज अबाउट 650 किलोमीटर्स, प्रिसाइजली 643 किलोमीटर है, और वो शुरू होता है पूना से और गोवा तक है. सो ये एक्टिविटी विद इन अ पर्टिकुलर टाइम आपको करना है, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. तो ये नॉन स्टॉप साइकिलिंग इवेंट है और वो मैंने इवेंट किया था विद इन दैट टाइम.
कितने टाइम में करना होता है आपको.
तो मैंने 38 आवर्स में वो किया था non-stop cycling. In fact, you have to take technical breaks. तो वो मैंने किया था जो कि बहुत मुश्किल था और पता चला कि हाँ कुछ एक बहुत बड़ी चीज अचीव की है।
643 किलोमीटर तक आप साइकिल चलाते?
या
तो कितने साल की प्रिपरेशन लगी वो करने के लिए?
वो नहीं कर, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस था नासिक में। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या तो हमको सैटरडे संडे जब छुट्टी होता है उस टाइम पे, या फिर बहुत जल्दी सुबह उठ के से अराउंड 2 o'clock 3 o'clock उसी टाइम पे मैं कर सकता था। क्योंकि जब आप इस तरह के जॉब में होते हैं तो किसी को आप चांस नहीं दे सकते कि साहब ये तो इनको ये तो सिर्फ यही चीज़ें करते रहते हैं।
True.
तो डिस्क्रीटली भी आपको करना पड़ता है कि भाई किसी को पता नहीं चल रहा। आप सुबह सुबह कर रहे हैं तो ठीक है, आप
ठीक
कर
है,
रहे
हाँ,
हैं, आप अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप बाकी सब चीज़ों के साथ में। पर आपका जो ऑफिस का टाइम है, आपको 10:30 बजे जो पहुँचना है, आप उस टाइम पर ऑफिस में हैं। और हमारे साथ क्या होता है कि कई बार जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और फ़ोन आ गया कि कोई इंसिडेंट हो गया, कोई क्राइम हो गया है, अटेम्प्ट टू से मर्डर हो गया है या कोई बर्गलरी हो गई है, तो वो छोड़ के इमीडिएटली हमको वहाँ जाना होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैंने 2017 में किया था और 16 से मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा साइकिलिंग शुरू किया था उस टाइम पर।
जब आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी तो कैसे ये हो गया? मतलब इट वॉज बिकॉज आप सालों से आपकी फिटनेस लेवल पे वर्क कर रहे थे, इसकी वजह दैट वॉज अ रीज़न कि कुछ मेंटल प्रिपरेशन होती है या इट्स ऑल इन द माइंडसेट कि यार अगर थान लिया तो हो कर ही रहता है, ऐसा कुछ? इज देयर समथिंग कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? व्हाट्स द रीज़न?
बहुत अच्छा आपने बताया। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि शायद आपको मालूम है कि इन चीज़ों की वजह से होता है। ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा मानना है कि फिज़िकल फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है ही, और एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं हेल्दी होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, उनके चलने से ही पता चलना चाहिए, बेशक वो यूनिफॉर्म में ना हो तब भी पता चलना चाहिए। कोई ये कुछ एक एक्सपेक्टेशंस हैं पुलिस ऑफिसर से। परंतु इसके अलावा आप जो हैं मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो हमारा पुलिस जॉब है ना, तो उसमें पुलिस में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब आपको बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मान लो आपके सामने रायट हो रहा है, तो आपको रायट रोकना है किसी भी हालत में। उस टाइम पे आप ये नहीं देखते कि क्या है, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी किसी इंसान को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, ये आपको रोकना है। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। आप किसी को ऑर्डर दे देंगे और आप बोलेंगे तुम्हें आप करिए और मैं पीछे से, ऐसा नहीं होता। सो दैट मेक्स यू मेंटली स्ट्रांग। परंतु इस केस में मैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, अगर अभी आप चाहें तो मैं उसके बारे में बता सकता
हूँ,
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं उसमें बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ। हर रोज सुबह उठ के मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ।
ओके
और वो है मेरा मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन।
ओके
और उसके साथ साथ जो है सेल्फ टॉक जो है होता है वो मैं करता हूँ। इसमें मेडिटेशन मेरा, ये मेरा रेगुलर प्रैक्टिस है।
कितनी देर करते हो
ये meditation? मेरा लगभग जो है आधा घंटा से 35 मिनट तक ये होता है।
Okay.
इसमें मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ, जिसको आपने पढ़ा होगा अलोम विलोम करके, ये होता है। तो एक नाक से आप एक साइड से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये मैं एक्सरसाइज करता हूँ ब्रीदिंग का। और उसके बाद में मैं फोकस करता हूँ अपने ब्रीदिंग पे, जो नॉस्ट्रिल से आप जब हवा एयर ले रहे हैं अंदर, तो उस टाइम पे हवा ठंडी होती है, आप जब छोड़ते हैं तो वो गर्म होती है, तो उस पे मैं फोकस करता हूँ और वो फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उससे जो है इस स्टेप से, एक पहले का जो बहुत मेजर स्टेप है वो है भ्रमरी बोलते हैं उसको।
Okay.
बेस्ट एक्सरसाइज है मैंने आज तक अपने ज़िंदगी में, जो कि आपके माइंड को सीरीन, आपके माइंड को कूल करती है, आपके माइंड की जो बहुत सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि बोला जाता है लगभग 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में हर रोज आती हैं, तो वो उस टाइम पे जब आप हमिंग की जो आवाज़ करते हैं कान और आंखें बंद करके, तो जब हम की आवाज़ जब आती है ना, तो वो आपको बहुत आपके माइंड को सुकून देती है, शांति देती है। ये तीनों स्टेप के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है विजुअलाइजेशन का। और विजुअलाइजेशन जो है, इट इज़ नॉट लाइक ड्रीमिंग, कि आप कुछ विजुलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि विजुलाइजेशन इज एक्चुअली इज लाइक फॉर्मिंग पिक्चर्स इन योर माइंड, मैप्स इन योर माइंड. आपने कुछ सोची है वो आपके माइंड में आता
है. मैनिफेस्टेशन.
मैनिफेस्टेशन इज द लास्ट वन, जो कि लास्ट प्रोडक्ट होता है, जो आपकी सोच के बाद में आप जो चाहते हैं वो दिखाए. जैसे एक आर्किटेक्ट होता है, वो कागज पे बनाता है, स्केच बनाता है, फिर उसके बाद में कलर कॉम्बिनेशंस करता है, उसके बाद में फिर वो एक्चुअल स्पॉट पे जाता है, फिर वो बिल्डिंग बनती है, वो फिर एक्चुअली दिखती है कि हाँ ये बिल्डिंग. वो उसके माइंड में होता है पहले, फिर बाद में वो मैनिफेस्ट होता है एक्चुअल उसके इसमें. तो इसमें जो विजुअलाइजेशन जो मैं बता रहा हूँ, उसमें हम मेंटल फ्रेम, जैसे क्या मुझे करना है, सो दैट इज़ वन फ्रेम. सेकेंडली उस चीज़ को मुझे अचीव करना है, तो वो उस जब मैं कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या रूट रहेगा मेरा, वो एक नेक्स्ट स्टेप है. प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए थर्ड स्टेप है, आपको स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स को मैं कैसे हैंडल करूँगा और कैसे इसको ओवरकम करूँगा. सो दैट इज़ योर थर्ड स्टेप. और उसके बाद जो फाइनल स्टेप है, ये सब चीज़ें मास्टरी करते 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 आप फाइनल उस पर आएंगे, और वो आपका जो है फाइनल रिजल्ट होगा, वो आपको आपका जो फाइनल जो गोल है ना वो होता है. तो ये जो प्रैक्टिस है ये मैं रेगुलर करता हूँ, कुछ भी चीज़ हो. जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी अंडरगोन थ्रू दिस, कि आज हम लोग बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं कैसे बात करूँगा. सो दिस हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. इनफैक्ट आपने जो डेकन क्लिफ बोला है, उससे नेक्स्ट जो इवन हार्डर देन दिस इज आयरन मैन
ट्रायथलॉन.
तो ये चीज़ें मैं करता हूँ.
नाइस. मैं आपसे पूछने वाला था अबाउट विजुअलाइजेशन की एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि है ना मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ विजुअलाइजेशन का. मैंने बहुत जब आई थिंक मैं 15 साल का था, 16 साल का था, तब मैंने माइकल जॉर्डन की एक कोट पढ़ी थी. माइकल जॉर्डन बोलता है कि हर चीज़ लाइफ में दो बार होती है, एक बार दिमाग में और एक बार रियलिटी में.
Yes.
तो तुम को अगर बास्केट मारना है, गोल अचीव करना है, तो पहले यहाँ अचीव कर लो, फिर रियलिटी में होता है.
एग्जैक्टली.
सो तब से मैं बहुत बड़ा बिलीवर बन गया, और मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिसको जब जब मैंने सोचा रियलिटी में वो आज होती रही है. तो मैं पब्लिक स्पीकिंग बहुत करता था, राइट, एंड अभी भी एक्चुअली करता ही हूँ. सो मैं जब भी स्टेज पर जाता हूँ, उससे पहले मैं एक घंटा जो मेरा स्टेज पे होगा वो मेरे माइंड में पहले से ही प्ले आउट हो चुका होता है कि मैं कहाँ पे खड़े होके क्या बोलने वाला हूँ, कौन मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उस टाइम पे मैं कहाँ देख रहा होऊंगा, मैं कैसा दिख रहा होऊंगा, मेरे क्या वर्ड्स होंगे, कहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन होगा. और वो बहुत हेल्प करता है, ऐसा लगता है मेरी पूरी जो पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी हो चुका है.
यस. yes. तो यही जो मैंने चीज़ बोली, तो इनफैक्ट वी आर एट द सेम लेवल. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस.
लवली. सो एक एग्जाम्पल दो, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए करता था, तो आप किसके लिए विजुअलाइज करते हो? बिकॉज एवरी डे आपकी लाइफ में रोज 100 नए चैलेंजेस आते हैं, राइट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली लेसन फॉर लीडरशिप. मैक्सिमम लीडर्स आई हैव मेट, वो सब के सब विजुअलाइज करते हैं और अपनी डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, राइट. एक बिजनेसमैन जो होता है वो सोच रहा है कि आज मैं प्रॉफिट कैसे कमा रहा हूँ या मार्केट कैपिटलाइज कैसे कर रहा हूँ. एक पॉलिटिशियन जो होता है वो सोच रहा है कि मैं आज रैली में और कितने लोगों का दिल जीत रहा हूँ या वोट जीत रहा हूँ. एज अ पुलिस ऑफिसर आप क्या विजुअलाइज करते हो? क्योंकि डेली आपको एक नए चैलेंज आपके ऊपर थ्रो होता है. आपका एक गोल नहीं होता, आपका मतलब बहुत सारे गोल्स हैं. एक दिन आप सोच रहे हो कि मैं किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, अगले दिन सोच रहे हो कि मैं नॉर्मल पब्लिक की सिक्योरिटी पे कैसे सॉल्व करूं, उसके बाद सोच रहे हो कि ये वाला जो क्रिमिनल है इसमें इमोशंस भी बहुत इन्वॉल्व है, तो मैं इसके साथ कैसे डील करूं. तो क्या विजुअलाइज करते हो?
बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. जैसे 2003 का कुंभ मेला था, मैं एसपी था वहाँ पे, तो कुंभ मेला मुझे करना है, तो इट इज़ अ बिग थिंग. आपको मालूम है लैक्स ऑफ पीपल वुड बी विजिटिंग देयर,
15 लाख पर डे.
या तो इतने लाखों लोग जब आ रहे हैं, तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार होने चाहिए. इसके अलावा वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो बहुत कम है, मतलब वो होंगे कोई 1.5 लाख के करीब वहाँ पे रहने वाले जो लोग रेजिडेंट्स, उनको भी ये समझाना है कि भाई आपके पास में इतने सारे लोग आने वाले हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अपने घर तक अपनी कार मोटरसाइकिल लेके आता हूँ, वो नहीं ला पाएगा उस टाइम पे, बिकॉज सब कुछ बंद होगा. सो दे हैव टू बी कन्विंस्ड. ओके, उसके बाद में जो है बहुत सारे साधु आएंगे वहाँ पे, और साधु हैं नागा साधु. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट नागा साधुस, तो 10 अखाड़े हैं नागा साधुस के, उनको भी हैंडल करना है बिकॉज दे दैट्स नॉट ईजी टू हैंडल. तो उनको समझाना उनकी लैंग्वेज, क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग मराठी बोलते हैं. आई एम ऑल्सो बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि भाई ये चीज़ भी करनी है और रूट भी देखना है. अगर थोड़ी सी भी चीज़ कहीं पे कुछ हो गया ना, अगर मान लो एक पत्थर बीच में आ गया, क्योंकि भीड़ जो उसको नहीं मालूम है, भीड़ के भी एक के पीछे एक लोग भी चल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ इंसिडेंट, एक आदमी गिरा, दूसरा फिर उसके ऊपर बहुत सारे लोग गिर जाते हैं. इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये कब आती हैं, जब आप अपने आप से बात कर रहे होते हो, अरे हाँ ये चीज़ रह गई, अरे इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होने वाला है, तो यहाँ पे मैं इस आदमी को लगाऊंगा क्योंकि ही इज़ द बेस्ट इन हैंडलिंग पीपल. मैं इसके साथ में बाकी ये लोग देने वाला हूँ. अरे कुछ लोग बहुत, क्योंकि उस टाइम इतनी भीड़ होती है तो गाय मतलब गुम हो जाते हैं, तो वो गुम जो हो रहे हैं बच्चे या लोग, तो उनके लिए मेरे को एक अलग वो टीम लगानी है. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना माइंड में चल रही होती हैं, फिर हम पेपर पे लिख रहे होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन होता है, देन यू डिस्कस दिस विद अदर्स कि इसमें क्या चीज़ कम रह गई है, फिर हम उसके रिहर्सल करते हैं. और रिहर्सल करने में फिर से कुछ चीज़ें कम रहती हैं, नहीं नहीं हमारा ये जो है 4:10 पे ये अखाड़ा निकलने वाला है, तो अगर ये यहाँ से निकल रहा है तो ये क्लैश हो सकता है दूसरे अखाड़े से, तो उसको भी हमको हैंडल करना है. सोचो कितनी सारी चीज़ें,
बहुत सारी.
ये ऐसे ही नहीं है कि हो जाता है तो हो जाता है, मतलब सबको लगता है ये तो पुलिस का काम है. बट ट्रस्ट मी, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट. और अगर कुंभ मेला चल रहा है तो आपको 3 दिन आप सो नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लो कि कल स्नान का दिन है, तो उससे 1 दिन पहले पूरी तैयारी, देखना, रिहर्सल, ये सब चीज़ें करना, उसमें हमारा पूरा दिन रात चला जाता है. लोग शुरू हो जाते हैं रात से स्नान के लिए तैयार होना और जाने के लिए, तो वो नेक्स्ट डे हमारा उसमें चला जाता है. थर्ड डे जो होता है ये सब लोग वापस जा रहे होते हैं, तो ये वापस भी ठीक से चले जाएं, अगर उस टाइम पे कुछ होता है तो देन ऑल्सो विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि भाई तुमको मालूम नहीं था कि ये वापस जाने वाले हैं. बंदोबस्त मेरे पास में उतना ही है, लोग उतने ही हैं, मेंटली कितने वो ट्रेंड हैं वो मेरे को देखना है, क्योंकि फटीक सेट हो जाता है. 24 घंटे आप जाएंगे जागेंगे तो आपको ये हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों. ये एक एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल कंटिन्यू मैं करता हूँ, जैसे मुझे आयरन मैन करना है. आयरन मैन इज वन ऑफ द most important and the most difficult races in the world, लोग बोलते हैं. ये रेस मैंने डिसाइड किया था कि 50 के बाद में मुझे करना है, क्योंकि उससे पहले कभी लगा ही नहीं था. मालूम ही नहीं था आयरन मैन क्या होता है. मैं नासिक में कमिश्नर पुलिस था, तो वहाँ पे पता चला कि भाई ये कुछ ऐसा कुछ रेस है. तो मैंने फिर उस टाइम पे सोचा चलो आयरन मैन करते हैं. सोच तो लिया, बट आयरन मैन के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ये 226 किलोमीटर की एक्टिविटी है. 226 किलोमीटर आपको सिर्फ 16 घंटे मिलते हैं, उसमें 16 घंटे में आपको ये एक्टिविटी करनी है. अब ठीक है ये हो गया, बट इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? उसके 3 कंपोनेंट्स हैं. आपको स्विमिंग करना है. स्विमिंग कितना है? 4 किलोमीटर. और वो 4 किलोमीटर स्विमिंग पूल में नहीं है, वो समुद्र के अंदर या फिर लेक में है. इट इज़ अगेन अ ह्यूज चैलेंज. ये होने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? साइकिलिंग. तो साइकिलिंग भी सिर्फ ठीक है, ऐसे नहीं है कि 180 किलोमीटर्स है और उसमें आपको इंक्लाइंस रहेंगे, डिक्लाइंस रहेंगे, और उसके लिए आपको क्लीट्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि नई चीज़ है. आपका आपको जो सैडल सोरनेस होगी उसकी भी तैयारी आपकी होनी चाहिए. और ये सब करते करते आप जो है आपकी बॉडी जो है जब 10 घंटे ये सब चीज़ें कर रही है तो आप फटीग सेट हो जाएगा आप में, आप स्लो हो जाएंगे और एनर्जी जो आपके लेवल्स जो हैं बहुत कम हो जाएंगे. उस टाइम पे आपका माइंड बोलता है कि नहीं, यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू हैव टू कंटिन्यू. सो देयर माइंड प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. वो अपनी बॉडी को बोलता है कि यू हैव नो राइट टू स्टॉप, you have to do it because this is being directed by me, by mind. फिर जो है आपको next जो है लगभग जो 42 किलोमीटर्स है वो आपको दौड़ना है. ये सब चीज़ें आसान नहीं है. तो imagine कीजिए at the age of 50 कितने लोगों ने किया है, ब्यूरोक्रेट्स में आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया हु हैज डन इट।
वाओ।
सो दिस 50 दिस एट द एज ऑफ 50 मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा था कि मेरे को स्विमिंग करनी है तो मैं एक स्ट्रोक में नहीं कर पाऊंगा, मुझे दो स्ट्रोक सीखने पड़ेंगे। तो मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक भी सीखा और मैंने फिर फ्री स्टाइल स्ट्रोक भी सीखा। फिर उसके अंदर आप स्विमिंग पूल में तो आपको नीचे दिखाई देता है कि अरे ये तो ब्लू है सब है, वहाँ डार्क होता है तो आपको अंधेरे में आप कर रहे हैं नीचे जब देखते हैं। थर्ड, आप जब स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको ब्रीद करना है, आप हर बार ही आप ऊपर ब्रीद आउट करोगे और ब्रीद इन भी ऊपर करेंगे, यू विल बी लूजिंग ऑन टाइम, तो वो भी आपको मेंटेन करना है, तो वो उसके लिए भी ये करना है। तो ये फिजिकल करते करते साथ में जो है आपको मेंटली मैं कर रहा था कि मेंटली कैसे, जैसे हर रोज रात को कल मुझे क्या एक्टिविटी करनी है वो मैं हर रोज माइंड में रन कर रहा था।
Got it.
कि मेरे को आज जो है 1 किलोमीटर स्विमिंग करनी है, 40 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है और उसके साथ में अगर मेरे को रनिंग भी करनी है तो मैं इतने बजे उठूंगा, शूज़ पहनूंगा और उसके बाद में मैंने दौड़ना शुरू किया। स्लो है बहुत बॉडी, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एनर्जी लेवल्स इतने नहीं हैं, पर उससे पहले मुझे वार्म अप करना है, फिर मैं शुरू करूँगा और इतनी देर के बाद में मैं रुक जाऊँगा और रुकने के बाद में मैं ये चेंज करूँगा, साइकिल लूँगा, फिर मैं साइकिलिंग करूँगा, साइकिलिंग करते करते ब्रेक लूँगा, पानी पीऊँगा, एनर्जी ड्रिंक लूँगा और उसके बाद में जो है 100 किलोमीटर या 40 जो भी किलोमीटर्स है उसके बाद में फिर मैं रनिंग शुरू करूँगा और रनिंग करते करते थकूँगा मैं, पर मैं फिर मैंने हर एक स्टेप के साथ में मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट करूँगा, जैसे ये मैं अपने दिमाग में रन कर रहा हूँ एक दिन पहले रात को, और नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद में क्योंकि मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो मैं टारगेट अचीव करूंगा। तो इस तरह से हाउ दिस माइंड प्लेज ऑन अस,
यू नो आई वाज इन फैक्ट डे बिफोर यस्टरडे मैं एक बुक पढ़ रहा था, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो इस बुक में एक बात बोलता है वो कि हमारे माइंड को नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, माइंड बस ये बोलता है कि जो तुम कर रहे हो और करो जो भी कर। तो अगर आप लेजी हो, आप सोते रहते हो तो माइंड बोलेगा सोते रहो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर खड़े होकर जिम में चले गए तो माइंड बोलेगा थोड़ा एक्स्ट्रा पुश कर ले, जिम में है ना तो और कर ले। सो सिमिलरली आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको सिर्फ की स्टेट चेंज करनी होती है, अगर आपने स्टेट चेंज कर दी तो ब्रेन को सिर्फ सिग्नल जाता है कि जो आप कर रहे हो वो और करते जाओ, ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है। सो आई थिंक जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या गेम होता है तो जब ड्राइव बहुत स्ट्रांग होती है ना तो हमें फटीक का ध्यान नहीं आता, और जब तक फटीक का ध्यान नहीं आता तब तक हमारा माइंड बोलते रहता है कि और करते जा। जैसे ही आपके माइंड को ये पता चला कि मैं थक गया हूँ तो ब्रेन बोलेगा हाँ थक गया ना अब और थकते ही जा, देन आप नहीं पुश कर पाते हो। सो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी ये। वेल
मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, ये दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड एक्चुअली, यू नो देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम इन आवर बॉडी।
ओके,
दिस इज अ साइकोलॉजी सब्जेक्ट। सो दिस सिस्टम इज सिटिंग समवेयर अराउंड आवर ब्रेन स्टेम, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, दिस इज लाइक अ डेटा फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो आप अपने दिमाग को, अगर मान लो आपको सिंगर बनना है, उसमें दो ऑप्शंस हैं आपके पास में, आप बोलो, आप हमेशा बोलो यार मैं बन ही नहीं सकता, इतनी कोशिश कर रहा हूँ मैं नहीं बन पाऊँगा। तो माइंड जो है ना, जैसे आपने बताया, वो हमेशा उसमें से जब डेटा जाता है ना वो नेगेटिव डेटा जाता रहता है, नहीं कर पाता, और वो आपके एक्शंस में मैनिफेस्ट होता है कि यार नहीं बन सकता और वो नहीं बनता। अपोजिट टू दिस, आपने बोला कि मैं बनूंगा, मैंने गिटार लिया है, मैं प्रैक्टिस करूंगा और मैं कर रहा हूँ, अरे मैं कल से कितना अच्छा कर रहा हूँ, अभी तो मेरा जो स्वर है वो भी अच्छे से चल रहा है, तो वो हमारी बॉडी वो लेना शुरू कर देगी एंड अल्टीमेटली हम एक अच्छे सिंगर बन जाते हैं, हमको लगता है कि यस आई कैन डू इट एंड दैट हैपन्स। सो दिस रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम इज द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू सेड।
Nice. I didn't know this. Reticular activation system. पढ़ूंगा मैं इसके बारे में और, because I am a big believer of this. मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है ना। One very fascinating thing is that I'm learning a lot of psychological theories from you, which is very new, considering at least जो मेरे माइंड में एक इमेज थी कि मैं आपसे कैसी कॉन्वर्जेशन करने वाला हूँ, उससे बहुत डिफरेंट हो रही है. लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझे आके RAS के बारे में बताओगे या ब्रोकन विंडो थ्योरी के बारे में. सो आई एम रियली इंस्पायर्ड. नाइस. ओके, सो वन थिंग, कुंभ मेला के बारे में हम बात कर रहे थे, एंड कुंभ मेला में आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि बहुत आपने प्लानिंग कर ली, लेकिन जब 1,500,000 लोग सामने होते हैं ना, तो सब प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें अप डाउन हो जाती है. Right, and you were there. You were, you know, managing the entire operations. कोई ऐसा incident कि जो on ground गलत हो गया and then वहाँ पे on spot ही आपने कुछ किया उसपे. So I want to learn the leadership lessons from that.
तो जैसे मैंने बताया, in fact बड़ा interesting चीज हुआ था. इसमें जो है first हमारा ना नासिक में दो जगह पे कुंभ मेला होता है.
Okay.
एक नासिक सिटी में और एक नासिक रूरल में त्रंबकेश्वर.
त्रंबकेश्वर, yes.
तो 10 अखाड़े in all 13 अखाड़ास हैं. तो 10 जो अखाड़े हैं वो त्रंबकेश्वर में और 3 अखाड़े नासिक सिटी में हैं. तो वहाँ पे कमिश्नर पुलिस, उनका अलग से फोर्स था. यहाँ पे SP रूरल जो कि मैं था, हम लोग देख रहे थे. तो एक इंसिडेंट उसमें ऐसा हुआ कि वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया और स्टैम्पीड में लगभग 39 पीपल दे डाइड. और नेक्स्ट जो है न्यूज़पेपर में, मेरे यहाँ पे हम लोग जब लोगों को छोड़ते हैं ना कि अभी साधुस जो है उनका स्नान हो गया, तो पब्लिक को अभी हम छोड़ रहे हैं, तो पब्लिक एकदम से एंग्जाइटेड रहती है, एक्साइटेड रहती है, एकदम से भागते हैं. तो भागने में ना एक दो लोग जो हैं गिर गए, और मैं वहाँ स्पॉट पे खड़ा था, और वहाँ पे खड़े होते हुए उन्होंने वो फोटोग्राफ कैप्चर कर लिया मीडिया ने. नेक्स्ट डे स्टैम्पेड वहाँ हुआ, फोटोग्राफ मेरा आया उसके ऊपर कि भाई इतने लोगों की डेथ हो गई, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ फोन कॉल्स वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं दिख रहा था उस फोटोग्राफ में. तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत सारी होती हैं. ये सिर्फ एक फैक्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था, विच इज़ देयर ऑन रिकॉर्ड. पर एक चीज़ जहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या, हमारा वॉकी टॉकी वायरलेस सिस्टम रहता है जिस पे हम लोग बात करते रहते हैं. एक तो हमने उसके लिए ट्रैफिक के लिए अलग से, कि ट्रैफिक जो है वो मूव करता रहे, सो देयर वाज एन इंचार्ज फॉर ट्रैफिक. देन उसके बाद में था बंदोबस्त ओनली फॉर कुंभ मेला बंदोबस्त. दैट वॉज अनदर चैनल विच वॉज वर्किंग. कितने लोग हैं, कब शुरू हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच गया ये अखाड़ा, सेकंड अखाड़े ने भी अभी एंट्री ले ली है, वो भी मूव कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, उसमें सब कुछ होता है, घोड़े वगैरह ये सब होता है, और वो सब लोग चल रहे होते हैं, साधु संत जो होते हैं. और एक तीसरा जो चैनल था वो हमारा नॉर्मल, क्योंकि ये तो कुंभ मेला त्रंबकेश्वर में हो रहा है, परंतु पूरा बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी क्राइम हो सकता है, वहाँ भी ट्रैफिक चल रहा है, वो तीसरा चैनल है. तो ये चैनल पे सब चीज़ें चल रही हैं. तो मैं जो है, हमको तीनों चैनल साथ में स्टाफ रहता है, तो एक मुझे जो है बताएगा कि सर जो कुशारवत कुंड है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, वहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं और वहाँ से निकल नहीं रहे हैं. इमेजिन ए सिचुएशन जहाँ पे लोग आते जा रहे हैं और निकलने की जगह कम है, तो वहाँ स्टैम्पिड हो सकती है, सफोकेशन हो सकता है, लोग निकल ही नहीं पाएंगे. तो वो सिचुएशन में मुझे एक वॉलंटियर ने बताया जो वहीं रहता था कि सर आप एक चीज़ इमीडिएटली कीजिए, जो सामने के जो दो गेट्स हैं ना उनको आप खुलवा दीजिए और लोगों को वहाँ से निकलवा दीजिए, अदरवाइज दिस विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. तो वो मैंने इमीडिएटली उसका सुना, समझा कि हाँ इससे क्या फ़ायदा हो सकता है. मैंने जैसे ही वो खोला, लोगों की एंट्री जो एग्ज़िट थी वहाँ से शुरू हो गया, और वो हम लोग इजीली उसको हैंडल कर पाए. तो एक ये इतनी मेजर सिचुएशन थी, अगर मैं उसको नहीं सुनता और पुलिस अंदाज में बोलता ये बच्चा है इसको क्या मालूम, वॉलंटियर है तो. सो ये हमारे कि वी हैव टू बी ओपन टू आइडियाज, उसके वजह से जो है ये चीज़ें कई बार कंट्रोल हो जाती हैं.
इंटरेस्टिंग. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट जो आपने बोला पुलिसी अंदाज एंड ये सब, राइट. सो वन ऑफ द मोस्ट प्राउड या आई डोंट नो, बहुत अथॉरिटी काइंड ऑफ पोजिशन आपकी होगी जब यू वर अ चीफ ऑफ द वॉर क्राइम्स एट द इन्वेस्टिगेशन यूनिट एट UN मिशन कोसोवो, राइट. दैट्स व्हाट यू वर. तो क्या था इसका, लाइक यू सर्व्ड देयर एज अ चीफ ऑफ वॉर क्राइम्स. तो चीफ ऑफ वॉर क्राइम्स मतलब क्या रोल था आपका, क्या कर रहे थे आप यूनाइटेड नेशंस के साथ?
तो यूनाइटेड नेशन का रोल ये है कि आपको मालूम है कहीं भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो या विद इन कम्युनिटीज इन अ कंट्री कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो होता है। तो योगोस्लाविया आपने मालूम होगा, हम सब लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें इंटरनली डिफरेंट कम्युनिटीज के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे जीनोसाइड हुआ, एक दूसरे को मार रहे थे, बहुत लोग मरे उसमें। उसमें ऐसा भी हुआ कि मैस रेप्स हुए, बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए, तो देर वॉज अ क्योस। तो वो सब चीज़ों के बीच में यूनाइटेड नेशन एंटर किया कि पीस हैज़ टू बी री एस्टेब्लिश्ड, किसी को हक नहीं है किसी की जान लेने का, किसी को उसके घर से निकालने का, वगैरह वगैरह। तो वो उसमें यूनाइट जो पीस फोर्स होती है, मैं उसका हिस्सा था। और कोसोवो जो उस टाइम एक प्रोविंस था, बाद में इट वाज डिक्लेयर्ड एज कंट्री आल्सो, तो मैं वहाँ पे गया था फ्रॉम इंडिया। उसका भी एक सिलेक्शन रहता है, ऐसे ही नहीं है कि किसी को भी भेज दें, उसके लिए सिलेक्शन होता है। आपका ड्राइविंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, आपका शूटिंग जो है पिस्टल शूटिंग वो अच्छा होना चाहिए, और आपका इंग्लिश स्किल्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ये तीन चार चीज़ें का एग्ज़ाम लिया जाता है बाकायदा, और आप उसको पास करते हैं और आप उसमें जाते हैं। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद में मैंने वॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ज्वाइन किया, आई वॉज डिप्यूटेड, और उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर करके ज्वाइन किया था, देन आई बिकेम डिप्टी चीफ, देन आई बिकेम चीफ ऑफ वॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अब हमारा काम उसमें ये था कि जो भी केसेस हुए हैं, जो भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं, उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। मतलब हमारे उसमें वहाँ के द दिन हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आल्सो, ही वाज आल्सो वन ऑफ द एक्यूज्ड, और बहुत सारे और भी लोग थे जो कि एक्यूज, तो वो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते थे। इसके अलावा बहुत सारी लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी और वो मिसिंग थे, तो उनकी बॉडीज जो मिल रही थी, उनको बॉडी बैग्स में पर्टिकुलर जगह में उनको रखा हुआ था, वो रिकॉर्ड था हमारे पास में। देर वर सम केसेस, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आई रिमेंबर वॉज जिसके अंदर हेडलेस बॉडीज का केस था, तीन बॉडीज थी जिनके हेड्स नहीं थे, वो बॉडीज हमको ढूंढनी थी, या फिर हमें किसी एक्यूज को अरेस्ट करना था, तो वहाँ पे कोसोवन फोर्सेस, हमारी फोर्स और लोकल फोर्स जिनको हम ट्रेन कर रहे थे, ये सब फोर्सेस मिलके उनको जो है अरेस्ट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे भी दे हैड इलीगल वेपन्स, वो अटैक भी कर सकते थे। और ये सब करते करते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग थी, सर्बियन या फिर कोसोवन या फिर जो जिप्सीज होते हैं उनके अलग लैंग्वेज, तो हमारे साथ में लैंग्वेज असिस्टेंट्स भी रहते थे। तो इतना इंटरेस्टिंग था ये सब चीज़ें, केस हुआ है, केस हो चुका ऑलरेडी, उसका डिटेल्स निकालना, एक्यूज को अरेस्ट करना, वो करने के बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो केस जाना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं उसमें, विच इज़ quite a challenge,
which extremely challenging because it's a new territory with new people, new language.
Yeah. और इसके अलावा जो टीम थी मेरी वहाँ पे अराउंड 56 ऑफिसर्स थे, सभी ऑफिसर्स अलग अलग कंट्रीज के थे, जिसके अंदर अमेरिकन्स भी थे, जिसमें ब्रिटिशर्स भी थे, जिसमें ब्राज़ीलियंस भी थे, जिसमें टर्किश भी थे, बांग्लादेशीज भी थे, सब लोग थे। सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ, यू आर हेडिंग देम, सो दे हैव टू लिसन टू यू। थिंक अबाउट अ सिचुएशन कि यार हम लोग यहाँ पे इंडियंस हैं तो इंडिया का वो कर रहे हैं, बट वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको आप कर रहे हैं हैंडल। इट वॉज अ बिग चैलेंज।
इट साउंड्स लाइक अ बिग चैलेंज। टेल मी एनी स्टोरी यू रिमेंबर विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट केस फॉर यू, या कोई ऐसा केस वहाँ पे ड्यूरिंग आपकी ड्यूरेशन में जो आपको लगा कि ये इम्पॉसिबल, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और क्यों अपना टाइम इसमें वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कभी सोच लगा उधर कोई स्पेसिफिक केस?
जैसे मैंने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट केस था हेडलेस केस, क्योंकि उसके बारे में बहुत पेपर्स में, इंटरनेशनली और कोर्ट ऑफ जस्टिस इन सब में उसके बारे में बहुत चर्चा होती थी। बट हमको जहाँ जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिली, हम वहाँ पे जाके एक्सकवेट करते थे और वो निकाल के देखते थे कि वहाँ पे बॉडी है कि नहीं। कम से कम हमने 4 से 5 जगह पे ये चीज़ें की।
तो आपको मिसिंग बॉडीज ढूंढनी थी कि मिसिंग बॉडीज आइडेंटिफाई करनी थी?
मिसिंग बॉडीज ढूंढनी भी थी और आइडेंटिफाई भी करनी थी, क्योंकि वो जो तीन बॉडीज थी हेडलेस थी, एक्यूज का मालूम था और वो क्या है, तो वो बॉडीज हमको वो करनी थी।
आई हैड अ क्वेश्चन बिकॉज आई हैव नॉट रेड अबाउट इट एनीवेयर कि आईपीएस ऑफिसर को क्या क्या पर्क्स मिलते हैं और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एंड हाउ मच इज अ बेसिक सैलरी फॉर एन आईपीएस ऑफिसर।
सो वी स्टार्ट व्हेन वी आर we start as an ASP.
Okay.
That time salary is good enough. I mean, I won't say less. क्योंकि अभी क्योंकि सेवंथ पे कमीशन के बाद में सैलरी काफ़ी अच्छी है।
ओके, सो एक गवर्नमेंट का वो होगा ना मैंडेट कि सब आईपीएस ऑफिसर्स को अराउंड द कंट्री पोजीशन वाइज सेम सैलरीज मिलती है।
सेवंथ पे कमीशन जो है उसमें सब है, कुछ स्टेट्स में और या फिर कुछ सिचुएशंस में जैसे नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं या जहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं
रिस्क
के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा
प्रीमियम
ये मिलता है, एक्स्ट्रा फंड आई वुड से और दिस थिंग, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम इज देयर एंड वी गेट इनफ। Salary is one thing, but the other perks which you get, like you get a vehicle, then you get driver with it, then you have, they pay for telephone also. All these things are there. What else you want?
कोई रेस्ट्रिक्शन होता है एज एन आईपीएस की गवर्नमेंट की तरफ से, आप ये नहीं कर सकते या आपकी फैमिली ये नहीं कर सकती, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन?
काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और उसमें हमको वी आर गवर्न्ड अंडर ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स।
ओके,
और उसमें वो सब रूल्स हैं, जैसे हम लोग कोई एक्स्ट्रा प्रोफेशन नहीं कर सकते, हमको कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो दैट हैज़ टू बी इंटीमेटेड, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है तो वी हैव टू इंटीमेट दैट टू द गवर्नमेंट, या अगर हम लोग कुछ पब्लिश कर रहे हैं तो उसका उसके बारे में बताना। तो और ऐसे कुछ भी नहीं है कि हमने उठा कि चलो आज मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ और वो कर लेता हूँ, सो दिस इज़ ऑल not as per rules. So there are many restrictions under which we have to work. Hum kahan pe jaake kisse kya baat ke, we cannot talk against the government, we cannot disclose the confidential things about our work or about the government documents. So there are many restrictions for that.
So it's like the good, the bad, the ugly stays with you. मूवीज के ऊपर बात करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट कभी आपने मूवी में देखा हो या सुना हो कि जो आपको लगा कि यार ऐसा नहीं दिखाना चाहिए पुलिस के बारे में या ये गलत है, कोई ऐसा बॉलीवुड में और कोई हॉलीवुड कोई मूवी में?
बहुत बड़ी
एग्जाम्पल
जैसे आपका एक फिल्म थी, कोई बेल्ट निकाला हुआ है, किसी की शर्ट बाहर है और वो कुछ ड्रिंक दारू पी रहे हैं और उसको डांस दिखा रहे हैं। I think this is something which is should not be shown. क्योंकि ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा कहीं पर होता है तो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन होता है, उसके ऊपर सस्पेंड या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अब ये बताने के लिए हम लोग जब डिस्कस करते हैं तब होता है। तो इस तरह की फिल्म्स में जो है दिखाया जाता है वो एक्सट्रीम होता है, जो कि विच इज़ रॉन्ग और विच इज़ नॉट एज पर लॉ। इनफैक्ट तीन फिल्म्स जो हैं जिन्होंने हमारी इमेज काफ़ी इम्पैक्ट किया ऑल ओवर इंडिया, फर्स्ट थी सरफरोश जो कि आमिर खान की थी, दूसरी जो फिल्म थी सिंघम रिसेंटली आई थी, और तीसरी थी राउडी राठौर अक्षय कुमार की। तो ये फिल्म्स की वजह से, अदरवाइज आप अगर देखें हर एक फिल्म में हमको दिखाया जाता है कि भाई ये तो डरावने हैं, ये तो नेगेटिव रोल है इनका, ऐसा है वैसा है, तो इन चीज़ों ने भी काफ़ी हमारे इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है।
ऐसी मेरा पर्सनल क्यूरियोसिटी है कि मूवीज़ में हम लोग काफ़ी देखते हैं कि गैंग्स और ये सब होता है, डू यू थिंक दैट स्टिल एग्जिस्ट अभी?
दे डू
एंड दे हैव सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे आप देखते हो कौन सी मूवी थी, शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट ऑल ऑफ दिस, द वे दे यूज टू ऑपरेट द गैंग्स अभी भी सेम तरीके से होती हैं?
उस लेवल पे नहीं होता शायद, बट कई बारी गैंग्स होते हैं इसी और इकट्ठे मिलते हैं, वो एक्ट भी करते हैं, एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं बहुत बारी, किडनैपिंग्स वगैरह इन सब चीज़ों में, बिकॉज दे डू इट एंड दे वर्क इन अ टीम, मे बी लाइक कोई बैंक से कोई पैसा निकाल के जा रहा है, सो दे ऑब्जर्व एवरीथिंग, दे स्ट्रेटेजिकली प्लेस देमसेल्व्स एंड दे loot a person. So these gangs are there. और डिपेंड करता है, कई जगह पे वो आर्म्स का यूज़ करते हैं, कई जगह पे कुछ और चीज़ का यूज़ करते हैं, दे डू एग्जिस्ट।
जैसे अमेरिका में बोलते हैं कि आई प्लीड द फिफ्थ, मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा, मैं रुकूंगा। इंडिया में ऐसा कुछ होता है कि आप बोलो कि यू कैन नॉट टॉक टू मी, आप में से जब तक मेरा लॉयर नहीं आएगा तब तक आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, आप बात नहीं कर सकते, क्या इंडिया में ऐसा लॉ है, रूल है?
हाँ, जो दे हैव एक्सेस, कभी किसी को भी हम अरेस्ट करते हैं, ही हैज़ अ राइट टू बी प्रेजेंटेड और टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट, है ना, उसके राइट हैं। अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं विद इन 24 आवर्स, आपको उसको मेडिकल करवाना है, आपको बाकी सब चीज़ें कराने हैं, और उसकी स्टेटमेंट जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ही इज़ अ राइट, ही हैज़ टू। तो वो सब चीज़ें होती हैं उसमें। आप किसी भी, जैसे जैसे एक लेडी है, आप उसको सनसेट के बाद में और सनराइज से पहले आप उनको पुलिस स्टेशन बुला नहीं सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके डी के बसु केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, अगर आपने किसी को अरेस्ट करना है तो हैंड कफिंग करनी है, नहीं करनी है, कैसे उसको ये करना है, ये सब गाइडलाइंस हैं हमारे पास में, तो उन्हीं उसी हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए।
ओके, तो ऐसे जो मूवीज़ में दिखाते हैं, ये किसी को भी चलते हैं पकड़ लिया गाड़ी में, ज़रा चलो अब तुम सीधे, ऐसे नहीं होता, इतना इजी नहीं होता।
अगर मान लो कोई रायट हो रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे वो आपके पुलिस की ड्यूटीज़ हैं, यू कैन यूज़ केन चार्ज, यू कैन यूज़ गैस शेल्स, और मे बी इन एक्सट्रीम केस यू कैन फायर ऑल्सो, तो वो इसलिए ज़रूरी है।
दैट इन केस ऑफ रायट,
दैट इज़ इन केस ऑफ रायट और अनरूली मॉब, तो उस टाइम पे उस आप किसी को ऐसे वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। आप उससे उनको बोलोगे लाउड स्पीकर पे कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आप ऐसे मत कीजिए, आप नहीं जाएंगे तो हम यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं, मगर वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक्सट्रीम केस में, क्योंकि हम लोग वी कैन नॉट अलाउ पीपल टू डाई, हम लोग नहीं अलाउ कर सकते कि लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हो, तो ये सब चीज़ें वो रहती हैं उसके अंदर।
तो इन एक्सट्रीम केसेस हो सकता है, बट ऐसे अगर नॉर्मल हो कोई किसी
नहीं
ना किसी एक्यूजेशन के बेस पे रैंडमली किसी को भी नहीं कर सकते?
नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ आपका अगर ये है, आपको लगता है कि भाई इसने कुछ केस किया है, या रात को ऐसी सिचुएशन में आदमी घूम रहा है कि वो कुछ क्राइम कर सकता है, तो एप्रीहेंशन है आपको, ऑन दैट बेसिस आप उसको कस्टडी में ले सकते हैं।
ओके, तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल 4 लोग अपनी कार में जा रहे हैं और कुछ उन्होंने ऐसी कहीं पे एक्टिविटी करी जिससे लगा कि हो सकता है ये कुछ और क्योस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए इधर आप उनको बोल सकते हो जाओ घर जाओ, और अगर वो घर नहीं गए तो आप उसको कस्टडी में ले सकते हो फॉर दैट टाइम।
यस, हम उनको चेक भी कर सकते हैं, उनकी व्हीकल चेक कर सकते हैं, उनके पास में कुछ आम तो नहीं है, उनके पास में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जैसे कुछ ड्रग्स या कुछ और तो नहीं है कि जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान हो।
तो इसके लिए कोई भी मतलब यू डोंट नीड एनी नोटिस, दैट्स
नो
इट्स राइट। तो रस्ते में अगर कोई पुल जा रहा है तो उसको आप रोक के, अगर आपको शक हो रहा है किसी पे, तो यू कैन स्टॉप देम एंड एट एनी गिवन टाइम, ऐसा भी नहीं रात हो सुबह।
यस यस, इनफैक्ट हम सरप्राइज चेकिंग्स करते हैं, जैसे 2 घंटे के लिए सब पूरे सिटी में हम लोग चेक शुरू कर देंगे, पुलिस रहेगी पूरा टाइम, सबको चेक करेंगे, कोई अंडर इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कोई आर्म तो कैरी नहीं कर रहा, या कुछ क्राइम करके तो नहीं भाग रहा, तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए हम लोगों को करना पड़ता है वो।
नाइस, नो इट्स गुड, ओनली इट्स गुड, आई एम तो ग्लैड दैट इट हैपेंस, बिकॉज आई एम अ बिग बिलीवर कि यू नो सरप्राइज चेकिंग और स्ट्रिक्ट फाइंस एंड पेनल्टीज होना चाहिए,
बिल्कुल,
तभी, बिकॉज प्रॉबेबली मैंने 1-2 कंट्रीज़ के बहुत एग्जाम्पल्स पढ़े, जैसे सिंगापुर में ऐसा बहुत होता है, तो इसकी वजह से आई फील लाइक कि वहाँ पे बहुत जल्दी से सिस्टम बन चुका था, क्योंकि एक्सट्रीम फाइन्स होते हैं और एक्सट्रीम रैंडम चेकिंग्स करते हैं वो लोग। सो आई रिमेंबर आई वॉज इन सिंगापुर, और सिंगापुर पे मैं शावरमा खाने के लिए फलाफेल की एक शॉप पे गया, राइट, मैं वहाँ फलाफेल की शॉप पे खा के जिस बाहर निकला हूँ, और इतने में 6-7 पुलिस की व्हीकल्स आई और उस फलाफल शॉप को घेर लिया, एंड आई गेट स्कैर्ड कि ऐसा क्या किया यार, मैंने तो नहीं किया, कुछ तो नहीं हो गया, राइट, एंड देन वी गेट टू नो कि उस फलाफल शॉप में वो लोग हुक्का पी रहे थे, विच वॉज नॉट अलाउड इन सिंगापुर एट दैट टाइम।
ओह,
सो उसके लिए इतनी गाड़ियां आई और ऐसा लगा कि पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हो गया है, क्या हुआ. एंड दे मेड श्योर कि उन्होंने उस चीज़ का इतना बड़ा डील बनाया कि आई थिंक उसके आसपास कोई एरिया सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँ या नहीं करूँ. एंड दे इमीडिएट अरेस्ट, इमीडिएट स्टफ. और मैं डर गया था फलाफल खाते हुए कि ओके व्हाट इज हैपनिंग. बट दैट वाज लाइक गुड सीन ऑफ हाउ. एंड दे वर चार्ज्ड वेरी हैविली, डिपोर्ट कर दिया था उनमें से काफ़ी लोगों को, बहुत सारा चीज़ें. वी सॉ दैट. ओके, देयर वाज वन इंसिडेंट कि कोलाबा में समबडी यूज्ड योर नेम टू एक्सटॉर्ट मनी. लाइक व्हाट वाज दैट इंसिडेंट एग्जैक्टली, क्या था? बिकॉज दैट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल यूज़ योर नेम टू डू. That was a big fiasco. क्या था?
Yeah. This was interesting because you know हमारी या आपकी सबकी profiles, photographs, सब चीजें available हैं यहाँ पे. तो somebody through WhatsApp displaying my photograph on his DP, उसने phone करके बोला कि मैं crime branch से बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ ये situation है और आपको जो है अगर आपने ये नहीं किया तो आपके ऊपर action लिया जाएगा. Or he wanted to extort money. Incidentally, this went to Bangalore. My daughter was there. And I don't know, this ऐसी चीज़ हुई कि भाई ये मतलब जैसे बनी बनाई कुछ ऐसी हुई और ऐसा हुआ होगा. तो वो बच्ची जो है मेरी डॉटर की फ्रेंड थी और उसके फ्रेंड के साथ में ये हुआ.
Okay.
तो उसने बोला कि मेरे को देखो ये कॉल आया है और ये पुलिस ऑफिसर हैं, ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं. उस लड़की ने मेरी डॉटर को कॉल किया. माय डॉटर इज इन स्टडिंग अब्रॉड नाउ. उसने बोला कि पापा ऐसे ऐसे ये हुआ है तो आप देखो. फिर मैंने बोला कि उसका नंबर दो मेरे को और उसको बोलो मेरे से इमीजिएटली बात करेगी. तो उसने इमीजिएटली मेरे को कॉल किया, उसका स्क्रीन शॉट्स भेजा. तो इमीजिएटली मैंने फिर पुलिस स्टेशन को बताया कि ये चीज़ हो रही है. तो देन द होल प्रोसेस स्टार्टेड. दिस हैज़ बिकम वेरी कॉमन आजकल. तो ये एक्सटॉर्शन का या फिर आपका नाम, आपकी फोटोग्राफ यूज़ करके और इंटेलिजेंटली जो लोग हैं उनको, जिनको मालूम है कि ऐसा हो रहा है तो वो वेरीफाई करते हैं और फिर ये पकड़े जाते हैं एक्यूज्ड. तो ये जो है इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था.
ऐसे इंसिडेंट है ना बहुत सारी पर्सनालिटीज़ के साथ होते हैं. इनफैक्ट डजेंट मैटर कि आप कौन सी पोजीशन पे और कहाँ पर हो, सबके साथ, हम लोगों के साथ ऐसा होता है. अगर आप हमारा यूट्यूब देखोगे उसमें डेली 100 कमेंट्स होते हैं कि आओ मेरे नाम की एक फेक प्रोफाइल बनी हुई है और उसमें होता है कि हम आपको पैसे कमाना सिखाएंगे एंड आओ हमें पे करो, मैं आपको रोज स्टॉक मार्केट टिप्स देता हूँ. एंड उसके नाम पर वो अपने मेरे सब्सक्राइबर्स से कभी 10,000 मांगते हैं, कभी 1,00,000 रुपए मांगते हैं, कभी 500 रुपए मांगते हैं और ऐसे इकट्ठे इकट्ठे करते हो. और ये हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और हर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की प्रॉब्लम है. ये दिन भर होता रहता है. तो आई वाज आल्सो रीडिंग कि इसकी वजह से शायद आप बहुत एक्टिव हो साइबर क्राइम के अगेंस्ट.
हाँ,
सो इस इंसिडेंट के बाद हुआ था कि पहले से ही आप साइबर क्राइम?
नहीं, मैं इसमें पहले से बहुत एक्टिव हूँ. इनफैक्ट नासिक में जब मैं था कमिश्नर पुलिस तो मैंने साइबर एम्बेसडर्स करके एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था.
और
उसमें यंगस्टर्स को हमने इन्वॉल्व किया था और यंगस्टर्स हमने शुरू में उसमें 42 यंगस्टर्स थे जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, लॉ स्टूडेंट्स वगैरह और आर्ट्स सब स्टूडेंट्स थे, उसके अंदर कुछ इंजीनियर्स भी थे. तो उनको हमने कुछ अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई. मेरे ऑफिसर्स भी उनके साथ में थे. ये हमने चार तरह की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई. एक तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए से अप टू 10th क्लास, उसके बाद में कॉलेज के लिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए. थर्ड था वो सोसाइटीज़ के लिए, वो था. और फोर्थ था इंडस्ट्रीज़ के लिए. तो ये चार हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई. फिर इसके बारे में हमने अवेयरनेस शुरू किया. हम लोग कॉलेजेस में जाते थे, मेरा स्टाफ जो था साइबर रिलेटेड, क्योंकि हमने साइबर पुलिस स्टेशन शुरू किया था तो उसके साथ में मेरा स्टाफ और ये बच्चे लोग ये जो ये जाते थे, प्रेजेंटेशंस दिखाते थे कि इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आपका पासवर्ड ऐसा हो, आपके पास में OTP अगर आता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करें उस आदमी को, या फिर आपके साथ में क्या डूज क्या डोंट्स, ये सब चीज़ें हमने उसमें दिखाई थी. एंड हाउ कैन यू सेव योरसेल्फ ऑन मीडिया, सोशल मीडिया बेसिकली, और हाउ कैन यू बी मोर रिस्पॉन्सिबल ऑन सोशल मीडिया. तो ये सब चीज़ें हमने की थी.
कोई इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद से आप एक्टिव हुए साइबर क्राइम पे, कि कैसे इसमें इंटरेस्ट आया?
क्योंकि ये सब हो ही रहा था, बच्चों के साथ में भी हो रहा था, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों के साथ में, गर्ल्स के साथ में। एक दिन एक बच्ची आई जो वॉज 18 years of age, वो आई कि सर मेरा किसी ने फेक इंस्टा प्रोफाइल बनाया है, और हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उसमें पता चला कि उस बच्ची के जहाँ भी फोटोग्राफ्स थे वो फोटोग्राफ्स उसमें न्यू प्रोफाइल में उसके ऐड किए, और वो फोटोग्राफ्स उसी के सब उठाए हुए थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस पर लिखी हुई थी। तो जब उसने ये किया तो हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, वी रोट टू इंस्टाग्राम कंपनी, तो उसके बाद में हमको पता चला ये कहाँ से किसने बनाया, तो हमने उसको अरेस्ट किया। तो बहुत सारे केसेस, इनफैक्ट एक केस में जब व्हेन आई वाज एडिशनल कमिश्नर क्राइम इन थाने, वहाँ पे एक लेडी मेरे पास में आई हु वाज अबाउट 59-60 years, वो आई कि सर आई हैव बीन चीटेड ऑन फेसबुक बाय अ पर्सन। तो इन्वेस्टिगेशन में मैंने शुरू किया कि भाई क्या हुआ कैसे, बोलते कि सर मेरे को एक फेसबुक पे मेरा एक फ्रेंड बना। मैंने कहा कभी आप उससे मिले हैं? नहीं मैं कभी नहीं मिली उससे। कहाँ रहता है? वो बोलता है मैं लंदन में रहता हूँ। तो मैंने कहा आपने कभी देखा नहीं उसको, कभी ये नहीं किया? एंड दे बिकेम वेरी क्लोज ओनली ऑन फेसबुक,
ओके,
नेवर मीटिंग। एंड इन द प्रोसेस दैट पर्सन एक्सटॉर्टेड 32 lakh rupees फ्रॉम हर। दिस लेडी केम टू मी, तो मुझे लगा कि दिस इज हॉरिबल। तो इस तरह से आप कैसे आप फंस सकते हैं इस तरह के केसेस में? तो वो एक सेंसिटिव केस था। या फिर एक डॉक्टर्स के साथ में व्हाट्सएप हैक हुआ था, और वो जिसने हैक किया तो सभी डॉक्टर्स के पास में मैसेजेस गए कि भाई ये मेरे प्रोफाइल है, मुझे इतना पैसा चाहिए, ऐसा हो गया जो आपने बताया। तो वो हमने राजस्थान से उस आदमी को अरेस्ट किया। तो अलग अलग तरह की ये चीज़ें होती रही। उसके बाद में फिर मैं कमिश्नर बना, क्योंकि ये हो ही रही हैं, तो मैंने कहा इस पर एक मैसिव अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ये मैसिव अवेयरनेस हमने वहाँ पे किया। एंड इन दिस हमने कम लाखों बच्चों लोगों तक हम वहाँ पे पहुँचे, एंड दैट वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। इनफैक्ट दैट वाज रेप्लिकेटेड एंड टेकन टू दिल्ली आल्सो। उन लोगों ने भी इसको इम्प्लीमेंट बाद में किया। तो अवेयरनेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अपार्ट फ्रॉम दिस, टेल मी कि अभी इंडिया का क्राइम सीन कैसा है? अभी पहले से कितनी जगह, आपको पिछले कुछ सालों से काफ़ी बदला है, लाइक कितनी जगह सुधरा है या कितनी जगह बिगड़ा है? कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टेट्स जहाँ पे और बिगड़ चुका है या बेटर हुआ है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस?
ये कहना मुश्किल रहेगा, बट एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि क्राइम पैटर्न चेंज हो रहा है।
ओके
जैसे पहले कन्वेंशनल क्राइम्स होते थे, जैसे अटैक होना किसी के ऊपर, बर्गलरी होना, रॉबरी, डकैती होना, उसकी बजाय अभी जो हम जो ट्रेंड देख रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहा है साइबर क्राइम, अभी इंक्रीज़ हो रहा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो ये जो शिफ्ट है ना वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आज जो है हर एक चीज़ में जनरली हमको ये पता चलता है कि भाई आइदर कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज अ टूल और इट इज़ बीइंग यूज्ड टू इंटिमिडेट पीपल। तो वो है, इंटरनेट का बहुत यूज़ हो रहा है आजकल, तो इससे जो है साइबर ऑफेंसेस जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। आपको सुना होगा कि कुछ एक आपके पास में कभी कोई मेल आएगा, कोई एसएमएस आएगा जिसको हम स्मिशिंग बोलते हैं, कोई ईमेल आ रहा है तो उसको हम फिशिंग बोलते हैं, या फिर आपके पास में कोई अननोन कॉल्स आएंगी, या आजकल तो एक नई चीज़ आई है कि एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आएगा आपके ऊपर, और वीडियो कॉल के ऊपर द अदर पर्सन, अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी में पढ़ रहा था, एंड द अदर पर्सन जो है द लेडी हु वुड स्टार्ट रिमूविंग हर क्लोथ्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई जस्ट रेड, आई थिंक एडवाइजरी हैज़ बीन इशूड बाय दिल्ली पुलिस। तो उसके बाद में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और वही रिकॉर्डिंग जो है उस आदमी को भेजते हैं कि ऐसे ऐसे आपने किया है, और दे ट्राई टू
एक्सटॉर्ट मनी।
और उसके बाद में नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद में कॉल आएगा कि क्राइम ब्रांच से हम लोग बोल रहे हैं, आपके साथ में ऐसे ऐसे आपने किया है, हमारे पास में वीडियो क्लिप आया है। तो इस तरह की जो है ना एक्सटॉर्शंस, थ्रेट्स, इंटिमिडेशन या फिर क्राइम इस तरह का हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, वाइट कॉलर क्राइम, तो वो एक बढ़ रहा है आजकल।
तो द क्राइम इज चेंजिंग, पैटर्न चेंज होते जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हो रही। सबसे सबसे अजीब या सबसे डिफिकल्ट क्राइम कोई स्टोरी आपके पास है जो आपने सोचा कि मेरी लाइफ में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, कोई स्पेसिफिक? जैसे दिस वाज आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट कि लोग आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं और आप वीडियो कॉल देखो, तो तो ऐसा कुछ और स्पेसिफिक जो आपकी हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट केस हुआ हो?
जैसे ये भी केसेस, मुझे लगता है कि केसेस सभी डिफिकल्ट होते हैं. डिफिकल्ट इन द सेंस कि उस आदमी के लिए जिसके साथ में वो क्राइम हुआ है वो डिफ़िकल्ट केस है. उसकी उसकी लाइफ पूरा स्टेक पे रहती है. सोचिए किसी का बच्चा अगर किडनैप हो गया है, 3 साल का बच्चा, उसके लिए उससे बड़ा क्राइम और क्या होगा. ये केस हुआ था जब मैं नांदेड़ में एसपी था. नांदेड़ में गुरुता गद्दी चल रहा था जब मैं एसपी था, विच वॉज अगेन लाइक कुंभ मेला.
ओके.
जिसमें लाखों लोग आए थे उस टाइम पे. और गुरुता गद्दी जो है 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी जब ही वेंट टू हिज हेवनली अबोर्ड, ही लेफ्ट हिज बॉडी, और उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि मेरे बाद में गुरु ग्रंथ साहब जो है वही लिविंग गुरु रहेगा और उसी की पूजा होगी, वही जो है अभी तक चलता आ रहा है. तो ये इंसिडेंट नांदेड़ में हुआ था. इंसिडेंटली 2008 में मैं वहाँ पे एसपी था, तो उस टाइम पे 300 सालाना हम लोग मना रहे थे. बंदोबस्त चल रहा था, हम लोग सब पुलिसिंग वो सब चल रहा था. उस दौरान में मेरे पास में एक कंप्लेंट आती है, एक लेडी और उसका हस्बैंड, वो लोग आते हैं कि साहब हमारा बच्चा 3 साल का है, वो गायब हो गया है और हमको पता नहीं कहाँ पे है, एंड दे वर शैटर्ड. तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पता चला कि जो मेड थी वो मेड उस बच्चे को लेके गायब हो गई थी. अब सोचिए लाखों लोग वहाँ पे हैं, नांदेड़ में हम लोग हैं, अब उस बच्चे को ढूंढना है, बच्चा ठीक से मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो एक केस था बट उस कपल के लिए पूरी ज़िंदगी थी वो. तो वो एक इतना मेजर इशू. तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और बाद में पहुँचते पहुँचते पता चला कि ये जो है मुंबई में जा सकती है. तो इमिजिएटली हमने वहाँ से, मैंने अपनी टीम बाई एयर भेजा 2008 में. नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते थे, यार ठीक है टीम भेजते हैं, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं वो, बट वो बहुत इम्पॉर्टेंट था एंड बीइंग अ लीडर ऑफ द फोर्स वो मेरे लिए उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट केस था. हमने उसको वहाँ पर भेजा. अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन क्योंकि काफ़ी थोड़ा चला, बट अल्टीमेटली वी कुड फाइंड दैट चाइल्ड. और उस लेडी को भी पकड़ा, उसका जो लवर था उसको भी पकड़ा. हम उन सब लोगों को लेके वापस मेरी टीम जो है नांदेड़ में आती है. जब मैं उस बच्चे को, उसकी माँ को जब मैं दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी चीज़ लाइफ में और कोई हो नहीं सकती. उस लेडी ने मेरे पाँव पकड़ लिए कि ये इतनी बड़ी चीज़ है. मैंने कहा ये मेरी ड्यूटी है, मगर उसकी ज़िंदगी थी वो. अब बताइए कि इस क्राइम्स को हम सबसे बड़ा क्राइम मानेंगे कि नहीं? मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा क्राइम था उस टाइम पे. तो हर एक क्राइम एक अलग स्टोरी है, हर एक क्राइम एक इम्पॉर्टेंट है. तो कोई क्राइम छोटा या बड़ा है ऐसे मैं उसको देखता नहीं हूँ. छोटा क्राइम बड़ा हो सकता है, और बड़ा तो बड़ा है ही, वो बढ़ भी सकता है. और तो जब उसने पाँव पकड़े तो मुझे लगा कि यार मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया. और मैं तो उस टाइम 2008 में तो यंग ही रहूँगा उस टाइम पे. तो उस टाइम की बात है ये. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में.
दी अदर इज यू नो सोशल मीडिया पे एक डिबेट चलता है कि सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम बजाने का क्या पॉइंट है. क्योंकि वहाँ पर हर तरह की एंटरटेनमेंट मूवीज चलती है और कोई पर्पज सर्व नहीं होता. तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? Why do we do? Do you think it's important to play national anthem in cinema halls? I feel it is.
मुझे लगता है और मैं पूरी शिद्दत से पूरे दिल से बोलता हूँ कि वो होना चाहिए. क्योंकि आज जो है बच्चों को मालूम ही नहीं है कि हम लोग किस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ के हमको फ्रीडम्स दिलाई थी. ये उनको ट्रिब्यूट है, ये उनको ट्रिब्यूट है जिन 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 लोगों ने इतना काम किया है आज जो है हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं. ये उन लोगों को ट्रिब्यूट है. वो सॉन्ग जो है, जो हमारा नेशनल एंथम है, उस नेशनल एंथम में जब हम सुनते हैं मैं हमेशा खड़ा होता हूँ और मैं गाता हूँ उसके साथ में. हमको बोलना चाहिए वो नेशनल एंथम. दैट गिव्स अस अ सेंस ऑफ प्राइड कि मैं इस देश का हूँ और ये मेरा एक कर्तव्य है, मैं अपने देश के उन लोगों को याद करूँ जिनकी वजह से आज मैं खुले आसमान में सांस ले रहा हूँ और वो मुझे एक 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 अलग एनर्जी लेवल पे लेके जा रहे हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है।
ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। सोचा नहीं था मैंने कि आपका प्रोसेस और अप्रोच बहुत ही साइंटिफिक होगा। मुझे लगा कि काफ़ी इमोशनल लेड या कंट्री की फैक्ट लेड होगा, बट इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल, वेरी हाउ डू इट, देयर्स अ ह्यूज साइंटिफिक, वेरी एजुकेटेड अप्रोच बिहाइंड एवरीथिंग दैट यू से, एंड आई लव्ड योर वे ऑफ आंसरिंग। भले वो हार्ड क्वेश्चन हो कि नॉर्मल क्वेश्चन हो, कुछ नहीं, द ईज जो आप आंसर करते हो ना, आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो, लाइक यू आर, शायद आप सुबह विजुअलाइज करके आए हो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू से एंड हाउ यू डू, इट्स सो कमेंडेबल। आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
थैंक यू सो मच एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। इनफैक्ट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ यू मेनी पीपल विल बी इंस्पायर्ड, और जो तुम बोलते हो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, और ये ज़रूर करते रहिए, और कभी भी कुछ भी हो तो आई एम ऑलवेज देयर।
थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू।
थैंक्स।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल दी एंड। प्लीज़ कॉमेंट में हमें ये बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि अगले एपिसोड हम और बेटर कर पाएँ। हम बहुत सारे नए नए टाइप के एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम हर कैटेगरी के लोगों के से बात करें और समझें कि इंडिया में जीता कैसे जा सकता है, इंडिया में अगर हम और आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा कैसे किया जा सकता है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं और क्या उनकी गलतियाँ जो हम नहीं करेंगे। इसलिए हम बहुत सारे नए नए गेस्ट को भी लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड किसी एक इंसान के साथ तो बिल्कुल शेयर करो जिसकी लाइफ चेंज होगी ऐसी कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद। थैंक यू सो मच। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।